मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, आज कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं कि मैं उनकी चर्चा आप सबके सामने करूं, और जो एक दो छोटी मोटी खबरें थी तो मुझे लगा कि नहीं, उन्हें थोड़े समय के लिए टाल देना चाहिए। और आ जाइए हम लोग एक ही विषय पर बात करें, और वो विषय है कि प्री 2023 की तैयारी आप कैसे करेंगे। बल्कि सच पूछे तो अपने शीर्षक को मैं थोड़ा सुधारना चाहूंगा और प्री शब्द को इसमें से हटाना चाहूंगा कि सन 2023 के सिविल सर्विस की तैयारी हम कैसे करें। सामान्यतया मैं जानता हूं और बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि जब भी तैयारी करने की बात आती है तो स्टूडेंट के दिमाग में जो पहला थॉट आता है, जो विचार आता है, वो प्री एग्जामिनेशन की तैयारी करने को लेकर आता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार हम प्री क्वालिफाई कर लें तो मेंस की तैयारी तो हम कर ही लेंगे। हालांकि वो जानते हैं कि बीच में जो 3 महीने का वक्त मिलेगा, 3 महीने के आसपास का, उसमें केवल मेंस की तैयारी नहीं की जा सकती। मेंस की तैयारी करने के लिए एक लंबा वक्त चाहिए। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं, यूं कह लीजिए कि जो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, उससे बचने का भाव निहित रहता है। इसीलिए हम जानबूझ करके अपने को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए ये सोचने लगते हैं कि अरे ये सब्जेक्ट हमको मेंस में लेना है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, ये तो बहुत सरल सब्जेक्ट है, 2 महीने में तैयार कर लेंगे, सिर्फ इसी में समय लगा देंगे, इसके नोट्स मिल जाते हैं। और यदि कहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका वह सब्जेक्ट रहा है तब तो आप अपने आप को और भी बहुत अच्छे तरीके से समझा लेते हैं कि नहीं, इसमें तो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, केवल मुझे रिवीजन करना है और बीच के 2-3 महीने में तो रिवीजन किया ही जा सकता है। और यहां पर आप गलत भी नहीं भी होते, और नतीजा ये होता है कि जो सारा फोकस होता है वो प्री एग्जामिनेशन पर हमारा हो जाता है। मैंने यहां तक पाया है कि जब जनरल स्टडीज की तैयारी की बात आती है तो दोनों का पैटर्न अलग है। प्री में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स को यह लगता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की जो तैयारी होगी वो कुछ अलग तरीके से होगी, और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उस परीक्षा की जो तैयारी होगी वो अलग किस्म की होगी। इसीलिए फिर यहां आकर के वो प्री की तैयारी को अलग कर देते हैं और मेंस की तैयारी को अलग कर देते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट ये करते हैं, और सच पूछे तो बहुत से स्टूडेंट तो मुझे ऐसे मिलते हैं, बातचीत करने पर भी इस बात का बहुत गहराई के साथ आभास होता है कि वो तैयारी ही प्री की कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में मेंस होता ही नहीं। शायद वो ऐसा मान करके चल रहे हों, या यूं कह लीजिए कि फिर से मैं सबकॉन्शियस माइंड का यहां नाम लूंगा कि उन्हें ऐसा लगता हो कि अगर हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो कुछ तो हो जाएगा, जबकि सच बात यह है कि कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि आप मेंस भी कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, मेंस करने पर जब आप इंटरव्यू देते हैं तब जरूर, चूंकि आप इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, या यूं कह लीजिए कि चलिए मेंस भी आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो थोड़ा सा एक लेवल तो आपका बन ही जाता है, आपकी एक पहचान बन जाती है। तो आजकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो आपको अपने लिए रख लेंगे, उनके लिए आप उपयोगी हो जाते हैं। यहां तक कि सरकार ने अब ये भी कर रखा है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो जो लिस्ट होती है ऐसे स्टूडेंट की जो सिलेक्शन नहीं जिनका हो पाया लेकिन जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, उनके नाम वो कुछ संस्थाओं को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को भेज देते हैं कि यदि आप चाहें तो आप इन्हें ऑफर जॉब के लिए दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं तो कुछ न कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है कि यूं ही पहुंच गए हैं। अब सिलेक्शन किसका होता है, इंटरव्यू कुछ तो ठीक है, आपकी अपनी योग्यता होती ही होती है, लेकिन कुछ संयोग भी हो जाते हैं। पता नहीं आप कितने नंबर के लिए चूक गए हैं, कितने अधिक मार्क्स आपको और मिल सकते थे अगर उस समय आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी बेहतर रही होती। ये भी होता है कि अगर बोर्ड थोड़ा सा दूसरा रहा होता, ढेर सारे चीजें काम कर रही होती हैं, यहां संयोग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी अपनी एक वैल्यू तो एस्टैब्लिश हो जाती है, लेकिन प्री क्वालिफाई करने पर नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि जो छोटी मोटी जगहें होती हैं वहां प्री क्वालिफाई कर लेना भी एक बड़ी बात मानी जाती है, तो वो भी आपको एक पहचान तो दे देती है। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें जब स्टूडेंट आते हैं तो बकायदे उसमें इस तरह का परिचय होता है कि इन्होंने 3 बार प्री क्वालिफाई किया, इन्होंने 2 बार प्री और 1 बार मेंस में बैठे लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इस तरह से अलग अलग लोग अपना परिचय देने लगे हैं। तो चलिए बेहतर है, क्योंकि प्री क्वालिफाई करना भी कोई एक मजाक बात तो नहीं है। लेकिन जो मेरा कंसर्न है फ्रेंड्स, वो यहाँ ये है कि अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, सच में सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। ये तो टुकड़े टुकड़े की बात है, हर कोई अपने अपने ढंग से सोचता है, सबकी अपनी क्षमताएं होती हैं, अपनी आवश्यकताएं भी होती हैं। मैं यहाँ गलत बिल्कुल किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ, सब अपने अपनी जगह पर अपने अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो उस ढंग से वो निर्णय लेते भी हैं। लेकिन यदि आप सचमुच में एक सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, तब आपका इस तरह का निर्णय गलत होगा कि पहले मैं प्री की तैयारी कर लेता हूँ, फिर मैं मेंस की तैयारी कर लूँगा, उतना समय मुझे मिल जाएगा और बाद में फिर इंटरव्यू के लिए तो समय मिल ही जाता है। प्लीज़, पहली बात कि आप अपने इस थॉट को बिल्कुल ड्रॉप कर दें, बिल्कुल छोड़ दें। यह जो विचार है, यह विचार काम नहीं करता है, यह विचार बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है। अभी देखिए, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनमें से बहुतों के आपको YouTube पर अनुभव सुनने को मिल रहे होंगे। जब आप उनके ध्यान से अनुभवों को सुनेंगे, तो आपको उनके अनुभव में कोई बहुत अलग अलग तरह की बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। बातें लगभग लगभग एक ही जैसी होती हैं, उनके कहने का अंदाज अलग अलग होता है, भाषा अलग अलग हो सकती है, उसकी सिक्वेंस अलग अलग हो सकती है। कोई किसी चीज़ पर दबाव डालेगा तो कोई किसी चीज़ पर जोर देगा, लेकिन जो टोटल बातें होती हैं वो लगभग लगभग एक जैसी ही होती हैं। इसलिए मैं यहाँ आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि ठीक है, जब भी आपका मन करे आप किसी को सुन लें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। लेकिन उनको सुनने के बाद आपको चाहिए कि आप बकायदे कुछ पॉइंट्स नोट कर लें, इस तरह से नोट कर लें कि नहीं, मुझे ये करना है, उनकी ये गाइडेंस है, इन गाइडेंस में मुझे अपने लिए इन गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे ये स्टेप लेने हैं, मुझे अपनी प्लानिंग में इन बातों को शामिल करना है, और फिर आप बकायदे उन पर काम करना शुरू करें। अगर आप यूं ही उनको सुनेंगे और सुनकर छोड़ देंगे और दिमाग में ये सोचेंगे कि अरे ठीक है, ये तो सिंपल सी बात कही है, सभी लोग कहते हैं, मुझे भी मालूम है, याद रहेगा, तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी इस आदत को प्लीज़ बदल दीजिए। देखिए, जब शुरू में हम इस तरह के सिंपल बातें सुनते हैं तो इनफैक्ट सच में लगता है कि हमें याद रहेगा, क्योंकि याद न रहने जैसी कोई बातें नहीं होती हैं। लेकिन हमारे मस्तिष्क की भी एक सीमा तो है, हम लगातार कितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें सुन रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें याद रखने की कोशिश भी करते हैं। मेरी कोई बात आज आप सुनते हैं, आपको अच्छी लगती है, वो आपको आज याद रहेगी, लेकिन एक महीने के बाद, क्योंकि बीच के 30 दिनों में आपने पता नहीं कितनी सारी और बातें सुनी हैं, तो हमेशा जो नई चीज़ें होती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाती हैं, पुरानी चीज़ें चाहे वो कितनी भी उपयोगी क्यों ना हों, कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हों, वो फिर पीछे चलती चली जाती हैं। लेकिन यदि आप उसे नोट कर लेते हैं, तो नोट करने का मतलब है कि आपने उसे वैल्यूएबल समझते हुए अपनी तिजोरी में सेफ कर लिया है, बचा कर रख लिया है। और बीच में जब आप पन्ने पलटेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं अरे ये बात थी, ये बात तो मुझे करनी थी और ये मैं स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, जबकि ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने खुद ये निर्णय लिया था कि मुझे ऐसा करना है, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा। रिमाइंड होने के बाद आप फिर उसे ऐसा करने लगेंगे। दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल फ्लड आया हुआ है YouTube पर, अलग अलग रैंक के स्टूडेंट, अलग अलग पृष्ठभूमि के स्टूडेंट, कुछ सामान्य पृष्ठभूमि के हैं, कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस से हैं, कुछ इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के हैं, कुछ IITians हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, कुछ बिल्कुल आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, कुछ रूरल बैकग्राउंड के हैं, कुछ हिंदी मीडियम के हैं, अलग अलग, कुछ साउथ के हैं, कुछ नॉर्थ के हैं, कुछ मेट्रोज के हैं, कुछ सामान्य शहरों के हैं, कुछ ने कोचिंग ज्वाइन की है, कुछ ने कोचिंग नहीं ली है, कुछ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल अपने घर पर ही कुछ लोगों ने पढ़ाई की है, कुछ लोगों ने बहुत बाद में जाकर के IAS बनने का फैसला किया, कुछ ऐसे भी हैं जो शुरू से ही IAS बनने के लिए ही तैयारी कर रहे थे, किसी के परिवार की जो पृष्ठभूमि है वो IAS अफसरों की पृष्ठभूमि है, बहुत पढ़े लिखे लोगों की पृष्ठभूमि है, कुछ की पृष्ठभूमि बहुत सामान्य सी है। तो अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोगों को आप सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो अलग अलग पृष्ठभूमि वाले जो बात कर रहे हैं, इसमें से कौन सी पृष्ठभूमि आपके साथ ज़्यादा मैच कर रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही मैच कर रही है, लेकिन ज़्यादा कौन सी पृष्ठभूमि आपके साथ मैच कर रही है। क्योंकि एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत बड़े कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ा हुआ है, जिसकी फैमिली जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, वो जो स्टूडेंट है, शुरू से उसने आईएएस बनने का फैसला कर लिया था क्योंकि उसके पिताजी भी बहुत बड़े अफसर हैं और वो शुरू से इस बारे में लगा हुआ है, लगी हुई है, और वो बहुत अच्छे रैंक ले आती है। तो अब उसकी जो बातें होंगी वो ज्यों की त्यों आपके काम की नहीं होंगी, क्योंकि वो तो अब ऐसी है जिस दिन वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर हो रही थी या अपीयर हो रहा था, तैयारी कर रहा था, उसी दिन तैयारी वाले दिन ही एक सामान्य पृष्ठभूमि वाले स्टूडेंट की तुलना में तो वो काफी कुछ ऊंचा उठा हुआ है। मतलब अगर हम इसको एक रूपक के माध्यम से कहें तो वह एक ऐसी चिड़िया है, एक ऐसा पक्षी है जो पहले से ही 50 फीट ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है और वहां से अब वो 50 फीट उसे और उड़ान भरनी है। और जो सामान्य पृष्ठभूमि का जो स्टूडेंट है वो तो उसे तो जमीन से उड़ान भरनी है, तो उसे टोटल 100 फीट उड़ान भरनी है। तो जिसे 100 फीट उड़ान भरनी है और जिसे 50 फीट उड़ान भरनी है, उनकी रणनीति में तो फर्क होना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप जो पृष्ठभूमि होती है जो बताने वाले की, उसे इग्नोर मत करें, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। मैं सीरीज के तहत इस विषय पर आगे भी बात करता रहूंगा और जब बहुत ही महत्वपूर्ण कोई घटना होगी तभी मैं आपके सामने रखूंगा। मैं चाहूंगा कि यह बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें कि प्री 2023, बल्कि ज्यादा अच्छा होगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। हम लोग की जो ऑफलाइन क्लासेज हैं 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए प्रियंका कुमारी ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनका गांव है प्रतापपुर, जिला पश्चिम चंपारण बिहार से हैं। तो प्रियंका जी, आपका स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सूर्य प्रकाश पटना बिहार से, वेदानंद जमशेदपुर झारखंड से, साक्षी सोनी सासाराम बिहार से, नांदी रावल अहमदाबाद से, ताराकांत सिंह कैमूर बिहार से, द्वित रानावत, अभिषेक कुमार मुजफ्फरपुर बिहार से और अनामिका डे आसनसोल वेस्ट बंगाल से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।